नमस्ते, मैं आरव हूँ। 903 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द नेचर ऑफ कोड, सिम्युलेटिंग नेचुरल सिस्टम्स विद जावास्क्रिप्ट। डेनियल शिफमैन की क्रिएटिव कोडिंग पर केंद्रित तकनीकी पुस्तक है। इसका विषय केवल चित्र बनाना नहीं, बल्कि उन सरल नियमों को प्रोग्राम करना है जिनसे प्रकृति जैसे जटिल, गतिशील और कभी कभी अप्रत्याशित पैटर्न उभरते हैं। पुस्तक के उदाहरण p5.js के माध्यम से ब्राउजर में चलने वाले दृश्य प्रयोगों के रूप में विकसित किए गए हैं। शिफमैन शुरुआत रैंडमनेस, प्रायिकता, वेक्टर और गति जैसे आधारों से करते हैं, फिर बलों, कणों, स्वायत्त एजेंटों, झुंड व्यवहार, सेलुलर ऑटोमाटा, फ्रैक्टल, विकासवादी गणना और न्यूरल नेटवर्क तक पहुंचते हैं। इसका उद्देश्य किसी प्राकृतिक घटना का पूर्ण वैज्ञानिक प्रतिरूप प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि पाठक को मॉडल बनाने की सोच सिखाना है, जिसमें अवलोकन, सरलीकरण, नियमों का चयन और लगातार प्रयोग शामिल है। इसीलिए यह पुस्तक प्रोग्रामिंग, गणित, भौतिकी और डिजिटल कला के संगम पर स्थित एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वेक्टर और न्यूटनियन गति से दृश्य व्यवहार की आधारशिला। पुस्तक का शुरुआती और निर्णायक पाठ यह है कि स्क्रीन पर वस्तु की स्थिति बदल देना प्राकृतिक गति का मॉडल नहीं है। शिफमैन गति को स्थिति, वेग और त्वरण के संबंध के रूप में रखते हैं और वेक्टर को इन राशियों को संभालने का व्यावहारिक उपकरण बनाते हैं। दो आयामी दिशा और परिमाण को एक साथ रखने वाला वेक्टर हर फ्रेम में वस्तु की चाल को अद्यतन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, हवा और आकर्षण जैसे बल जोड़े जाते हैं। बल को द्रव्यमान के संदर्भ में त्वरण में बदलने पर अलग वस्तुएं एक ही वातावरण में अलग तरह प्रतिक्रिया देती है। यही छोटा अंतर सिमुलेशन को यांत्रिक एनिमेशन से अधिक विश्वसनीय बनाता है। न्यूटन के नियमों का प्रयोग यह सूत्र याद कराने के लिए नहीं, बल्कि कोड की संरचना तय करने के लिए होता है। प्रत्येक चलती वस्तु अपनी अवस्था और व्यवहार को एक ऑब्जेक्ट में रख सकती है, जिससे अनेक स्वतंत्र वस्तुओं का प्रबंधन संभव होता है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि गणितीय शुद्धता और दृश्य उपयोगिता हमेशा एक ही बात नहीं है। किसी मॉडल में वास्तविकता के कुछ पहलू जानबूझकर छोड़े जा सकते हैं, यदि चुने गए नियम दर्शनीय और समझने योग्य परिणाम देते हैं। यह दृष्टि गेम, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन में गति को तर्कसंगत ढंग से गढ़ने के लिए उपयोगी है। दूसरा, रैंडम वॉक, प्रायिकता और नॉइज से नियंत्रित अनिश्चितता। प्रकृति में अनियमितता अक्सर पूरी तरह बेतरतीब नहीं होती। द नेचर ऑफ कोड इस अंतर को रैंडम वॉक, प्रायिकता वितरण और पर्लिन नॉइज जैसे विचारों के माध्यम से समझाती है। एक साधारण रैंडम वॉक में हर कदम स्वतंत्र हो सकता है, इसलिए उसका रास्ता अनिश्चित दिखाई देता है। पर जब दिशा चुनने की संभावना बदली जाती है या सामान्य वितरण का उपयोग होता है, तो परिणाम में झुकाव और पहचान आने लगती है। पाठक सीखता है कि रैंडम संख्या केवल सजावटी विविधता नहीं है, बल्कि व्यवहार को नियंत्रित करने वाला डिजाइन पैरामीटर है। पर्लिन नॉइज का महत्व इससे अलग है। यह पास के मानों में निरंतरता देता है, इसलिए इससे हवा की लहर, भूभाग, जैविक कंपकंपी या धीरे बदलती दिशा जैसे प्रभाव बनाए जा सकते हैं। पूर्ण रैंडमनेस अचानक छलांगे पैदा करती है, जबकि नॉइज समय और स्थान में संबद्ध परिवर्तन देता है। पुस्तक का व्यापक संकेत यह है कि विश्वसनीय दिखने वाला प्राकृतिक रूप अक्सर निश्चित नियम और सीमित अनिश्चितता के मेल से बनता है। कोडर सीमा, वितरण, पैमाना और समय के इनपुट बदलकर एक ही एल्गोरिदम से बहुत अलग दृश्य भाषाएं बना सकता है। इस अध्यायगत आधार के कारण बात के कर्ण, जीव और जनसंख्या मॉडल कृत्रिम रूप से दोहरावदार नहीं लगते। तीसरा, कर्ण प्रणालियां और बलों का संचय। जटिलता को छोटे नियमों में बांधना कर्ण प्रणाली पुस्तक की उस मॉडलिंग पद्धति को मूर्त रूप देती है, जिसमें बड़ी दृश्य जटिलता को अनेक छोटी स्वतंत्र इकाइयों से बनाया जाता है। एक कण के पास सामान्यतः स्थिति, वेग, त्वरण और आयु जैसी अवस्थाएं होती हैं। हर फ्रेम में उस पर बल लागू होते हैं, उसकी चाल बदलती है और उसका जीवन घटता है। नए कण उत्पन्न करने तथा पुराने हटाने से धुआं, बारिश, चिंगारी, आग या झरने जैसे प्रभाव संभव होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि कण स्वयं किसी वास्तविक पदार्थ की पूर्ण प्रतिकृति है। महत्वपूर्ण यह है कि जन्म, परिवर्तन और समाप्ति के नियम सामूहिक रूप से किस तरह व्यवहार उत्पन्न करते हैं। शिफमैन इस प्रक्रिया के जरिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उपयोग भी स्पष्ट करते हैं। जब कण का डेटा और उसके अद्यतन करने वाले तरीके एक इकाई में रहते हैं, तब प्रणाली को बढ़ाना, अलग बल देना या दृश्य रूप बदलना व्यवस्थित रहता है। कणों पर गुरुत्व, प्रतिरोध, आकर्षण या सीमाएं लागू करके पाठक देख सकता है कि एक ही आधारभूत ढांचा कितने भिन्न परिणाम देता है। यह विषय प्रदर्शन संबंधी व्यावहारिक प्रश्न भी उठाता है, क्योंकि बहुत अधिक कणों को हर फ्रेम में अद्यतन करना महंगा हो सकता है। इसलिए पुस्तक केवल आकर्षक प्रभाव नहीं सिखाती, बल्कि अवस्था प्रबंधन, संग्रहों की सफाई और नियमों की लागत पर विचार करने की आदत भी बनाती है। चौथा, स्वायत्त एजेंट और फ्लॉकिंग में स्थानीय निर्णयों से सामूहिक पैटर्न। स्वायत्त एजेंटों वाला भाग प्राकृतिक प्रणालियों को समझने का एक अलग स्तर प्रस्तुत करता है। यहाँ किसी वस्तु को बाहरी रूप से तय रास्ते पर चलाने के बजाय उसे लक्ष्य खोजने, रास्ता अनुसरण करने, दूरी बनाए रखने या पड़ोसियों से प्रतिक्रिया लेने के नियम दिए जाते हैं। एजेंट की दिशा और गति उसके आसपास की जानकारी के अनुसार बदलती है। इस ढांचे का प्रसिद्ध उदाहरण फ्लॉकिंग है, जिसमें पक्षी जैसे एजेंट किसी केंद्रीय नियंत्रक के बिना समूहगत गति बनाते हैं। अलगाव का नियम बहुत निकट एजेंटों से दूरी रखता है, संरेखण पड़ोसियों की दिशा के अनुरूप गति को मोड़ता है और सामंजस्य समूह के केंद्र की ओर खींचता है। इन स्थानीय नियमों का संयुक्त परिणाम झुंड जैसा पैटर्न है। पुस्तक का वैचारिक योगदान यह दिखाना है कि उभरता व्यवहार किसी एक एजेंट की योजना में मौजूद नहीं होता, वह परस्पर क्रियाओं से पैदा होता है। इसलिए मॉडल का मूल्यांकन केवल कोड पढ़कर नहीं, उसके चलते हुए परिणाम को देखकर भी करना पड़ता है। नियमों के भार, देखने की सीमा और अधिकतम गति में छोटे बदलाव से समूह बिखर सकता है या अत्यधिक कठोर हो सकता है। यह पाठ रोबोटिक्स, गेम AI और भीड़ सिमुलेशन के लिए उपयोगी है, पर साथ ही यह सावधानी भी देता है कि झुंड जैसा दृश्य बन जाना वास्तविक पशु व्यवहार का संपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अंत में सेलुलर ऑटोमाटा, विकासवादी गणना और न्यूरल नेटवर्क में अनुकूलन के मॉडल पुस्तक के उन्नत हिस्से जीवंतता और बुद्धिमत्ता जैसे विचारों को नियम आधारित मॉडलों से जोड़ते हैं। सेलुलर ऑटोमाटा में ग्रिड की प्रत्येक कोशिका सीमित अवस्थाओं में रहती है और अगली अवस्था पड़ोसी कोशिकाओं के आधार पर तय होती है। नियम अत्यंत छोटे होते हुए भी फैलाव, स्थिर आकृतियां या दोहराती संरचनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। यह उभार का दूसरा रूप है, जहां वैश्विक पैटर्न किसी केंद्रीय चित्रण आदेश से नहीं बनता। फ्रैक्टल और शाखानुमा रूपों के साथ पुस्तक पुनरावृत्ति के जरिए जैविक दिखने वाली संरचनाओं की संभावना खोलती है। विकासवादी गणना में समाधान या जीवों की जनसंख्या, फिटनेस, चयन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन के माध्यम से पीढ़ियों में बदलती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक विकास की संपूर्ण जैविक व्याख्या नहीं, बल्कि खोज और अनुकूलन की संगणकीय रणनीति समझना है। न्यूरल नेटवर्क वाले भाग में इनपुट, भार और सीखने के सरल रूपों के जरिए वर्गीकरण या निर्णय का परिचय मिलता है। बाद में न्यूरोइवोल्यूशन सीखने और विकासवादी खोज को जोड़ता है। इन विषयों की शक्ति उनके दृश्य परिणामों में है, क्योंकि पाठक पैरामीटर बदलने पर मॉडल की सीमाएं सीधे देख सकता है। फिर भी पुस्तक इन्हें आधुनिक बड़े पैमाने की मशीन लर्निंग प्रणालियों का विकल्प नहीं बताती। इसका जोर मूल तंत्र, प्रतिनिधित्व और प्रयोगात्मक समझ पर है। निष्कर्ष में, द नेचर ऑफ कोड उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें जावास्क्रिप्ट का आरंभिक परिचय है और जो उसे केवल वेबसाइट व्यवहार तक सीमित नहीं रखना चाहते। क्रिएटिव कोडर, डिजाइनर, कला और प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी, गेम बनाने में रुचि रखने वाले प्रोग्रामर तथा भौतिकी आधारित दृश्य प्रयोग करने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल नए प्रोग्रामर के लिए यह पहला प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि कोड पढ़ने और फंक्शन, ऑब्जेक्ट तथा लूप की बुनियादी समझ उपयोगी रहेगी। फिर भी भाषा और उदाहरण अपेक्षाकृत सुलभ है, इसलिए अभ्यास के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ तैयार प्रभावों की सूची से अधिक गहरा है। यह सिखाती है कि किसी घटना को किन अवस्थाओं, बलों, नियमों और सीमाओं में विभाजित किया जाए, फिर परिणाम देखकर मॉडल को कैसे सुधारा जाए। यही कौशल नए सिमुलेशन और इंटरैक्टिव कलाकृतियां बनाने में स्थानांतरित होता है। समान विषय की कई पुस्तकें या तो गणितीय सिद्धांत को अमूर्त रूप में रखती है या किसी ग्राफिक्स लाइब्रेरी की सुविधाओं तक सीमित रहती है। शिफमैन की विशेषता यह है कि वे दृश्य, चलने योग्य प्रयोगों के माध्यम से गणित और प्रोग्राम संरचना को साथ रखते हैं। p5.js का ब्राउजर आधारित वातावरण परिणामों को तुरंत देखने और साझा करने में मदद करता है। जो पाठक नवीनतम मशीन लर्निंग ढांचों, उत्पादन स्तर के फिजिक्स इंजन या कठोर वैज्ञानिक मॉडलिंग की खोज में है, उन्हें अतिरिक्त स्रोत चाहिए होंगे। लेकिन प्राकृतिक प्रणालियों से प्रेरित संगणकीय सोच विकसित करने के लिए यह एक मजबूत और विशिष्ट आधार है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डैनियल शिफमैन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।